यम सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। चार अड़तीस सतहत्तर वर्ष पुराना अपने जीवन में से दुख को भीतर से निकाल के फेंक दो। कुछ भी हो जाए हम भगवान की तरफ चलने वाले हैं। आनंद तो भगवान का रूप है, हमको भगवान की जरूरत है, दुख की जरूरत ही नहीं है। तो हम इसको पैदा ही क्यों करें? कोई कहे कि दुख तो भाग्य का फल है, प्रारब्ध का फल है। चिंता करने में, भय करने में, शोक में तो कोई भाग्य है नहीं, ये मूर्खता है। यदि शोक करना भाग्य की बात होती तो भगवान अर्जुन को ये क्यों कहते कि अशोचानन्व शोचस्त्वम अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तुम शोक मत करो, जब भाग्य से आने वाला शोक होता ही है तो फिर भगवान आदेश क्यों देते कि शोक मत करो? ये मूर्खता है। हमने तो खूब गहरा विचार किया, चिंता शोक दुख के लायक संसार में कुछ भी वस्तु नहीं है। फिर ये मनुष्य क्यों चिंता शोक करते हैं, क्यों दुख पाते हैं? खूब विचार किया तो यही बात प्रतीत हुई कि वास्तविक चीज को जानते नहीं, मूर्खता है, इसलिए शोक चिंता होती है। कोई मर गया तो शोक करने लगे। शोक क्यों करो? क्योंकि आप संसार में बैठे हो। विचार करो, संसार है जो विनाशी है, चलने वाला है, उसमें बैठे हुए हो, फिर चिंता करो? सब विनाश होगा। जो आपको ये सत्य प्रतीत होता है, गलती तो आपकी यहां है। भगवान ने संसार को सत्य बनाया होता और उसमें से आपका जो परिवार है उसको यदि असत्य बताया होता तब तो बात बोलते। कहीं जाओ सिवाय मृत्यु के कुछ है ही नहीं, अभाव के अलावा कुछ है नहीं। शोक क्यों करो, चिंता क्यों करो? ज्ञान की दृष्टि से देखो, भक्ति की दृष्टि से देखो, व्यवहार की दृष्टि से देखो। क्यों अपने जीवन में चिंता शोक और दुख को स्थान देते हो? ये बहुत ही बड़ी भारी अज्ञानता है। विचार करो कि विनाश का ही तो विनाश होता है। स्वप्न का संसार आंख खुलते ही नष्ट हो गया, क्योंकि वो आंख बंद करने पर पैदा हुआ। ऐसे ये दिखने वाला संसार है, ये आंख बंद होते ही बंद हो जाता है, चाहे नींद में हो चाहे मौत में हो। भक्ति मार्ग से देखो तो सब भगवान करते हैं, किसी प्राणी को जन्म देते हैं, किसी प्राणी को ले जाते हैं, किसी प्राणी से मिलाते हैं, बिछो करते हैं, करने वाले तो भगवान है। फिर चिंता क्यों करना? भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, मेरा ही कहना नहीं मानता, मैं जो करता हूं उसमें तुम शोक और दुख मनाते हो, फिर तुम मेरे काहे के? दांत से जीभ कट जाए, अपने दांत जीभ कट जाए, तब पत्थर से दांत तोड़ने में हानि किसकी होगी? ये दांत को पत्थर से तोड़ो, दांत ने मेरी जीभ को काट दिया, तो अभी तो तुम्हारी जीभ कटी, अब तुम्हारा दांत और टूटेगा, तुम्हारा ही नुकसान हुआ। कोई मर जाए तो जो साधक होता है वो कहता है आनंद हो गया। कोई पूछे, अरे तुम रोए नहीं, दुख किया नहीं, तुम्हारे घर में मृत्यु हो गई, फिर भी तुम आनंद से बैठे हो, तो वो जवाब देता है कि केवल मन खराब करने से क्या फायदा, मेरे भक्ति में बट्टा लगता है ना, बड़ा दुकानदार है और उसके पास कोई माल लेने के लिए धोखेबाज आदमी आता है और वो धोखा देने के लिए आया, उसी समय में यदि उसको किसी ने बुला लिया और वो दुकान से चला गया तो वो सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे बट्टा लगता। ऐसे आप तो एक व्यापारी हो, भक्ति का व्यापार करने आए हो, कोई आ जाए तो अच्छी बात, चला जाए तो भाई चला गया, आने और जाने को ही देखो, इसमें सुख और दुख मत मानो। भक्ति में बट्टा लग जाएगा, भगवान की प्रेरणा से ही सब होता है, होने में भगवान की प्रेरणा है। हम खोटा काम करें तो रो, पश्चाताप करो, समझदारी से चलो, संसार में यूं ही चलने से फायदा नहीं होगा। बेसमझी से तो पशु चलते हैं, मनुष्य नहीं चलते। थोड़ी सी समझदारी को काम में लोगे, चिंता दुख नहीं रहेगा। विवेकी आदमी होता है, ज्ञान को काम में लेने वाला होता है, वो भी कहता है मेरे पास चिंता शोक आ ही नहीं सकते। फिर महात्मा होते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। मूल बात तो यह है कि चाहे कोई कैसा ही आदमी हो, यदि असल में कोई महात्मा के पास बैठता है तो उस महात्मा के प्रभाव से उसकी चिंता दूर हो जाती है। लोग घरों में कभी कभी अच्छे महात्मा होते हैं, उनको ले जाते हैं, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, अच्छे महात्मा को ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? कोई महात्मा झाड़ा फूंक करके ठीक करेगा, उसका रोग दूर कर देगा क्या? क्या मरे हुए को जिला देगा? जिलाएगा नहीं। महात्मा घर में आएगा, बैठेगा और वो अपने कोमल शब्दों से कुछ बात कहेगा तो वो मूर्खता मिटेगी, अज्ञानता मिटेगी। इसके लिए महात्मा को ले जाना चाहिए। महात्मा को ले जाओ पर लौकिक आशा मत करो। चिंता मत करो। एक महात्मा यहां बैठे हैं तो श्रद्धा वाला उसके पीछे पीछे बैठ गया बैठेगा कि इसकी धूल भी मुझ पर पड़ेगी तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। कृतकृत्य हो जाऊंगा, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। ये गंगा जी है तो वहां गंगा को प्रणाम करेगा, यानी किसी प्रकार महात्मा की धूल अपने पर पड़े। स्नान करता है तो वह महात्मा जहां नहाता होगा उसके नीचे उसके आसपास जिधर पानी बहेगा वहां नहाएगा। उसका स्वार्थ क्या हुआ, पानी इधर आवे और वो पानी मेरे लगे, ये श्रद्धा है। श्रद्धा जिसकी होती है उसके मुंह से इशारा से यदि समझ में आ जाए तो वह पूर्ण करने को प्राण पर्यंत चेष्टा करता है। और करते हुए भी आनंद मानता है, इशारे से यदि काम करे तो बाराना श्रद्धा हो गई। आज्ञा देवे तब करे तो ये घटिया दर्जे की श्रद्धा है। आज्ञा मिलने पर भी काम न करे पूरा न करे और उसको बंधन माने कि कहां आफत आ गई तो इसमें श्रद्धा है नहीं। श्रद्धा होने पर कितनी विलक्षणता होती है देखो तो सही। चरणों में गिर जाए तो उठाने पर भी वो उठ नहीं सकता है, उसकी शक्ति काम नहीं करती, कपट नहीं है, दंभ नहीं है, जान करके नहीं गिरता है, वो श्रद्धा से एकदम गिर जाता है, उठ नहीं सकता है। वो बार बार मन में सोचता है कि मैं ऐसा अधम पापी ऐसे महात्मा के चरणों में आने के लायक ही नहीं हूं, ये तभी मुझे उठा रहे हैं, उसके मन में ये भाव आता है। श्रद्धा जिस पर है उसको कभी भी पीठ देकर नहीं बैठते, ऊंचे आसन पर नहीं बैठ सकते। इससे भी आगे श्रद्धा और प्रेम हो तो सोने में सुहागा है, सोने में सुगंध है, वहां शांति और आनंद का पार ही नहीं है। जैसे किसी आदमी के मन में लोभ है और उसको रुपया मिले तो कितनी प्रसन्नता होती है, और उससे भी ज्यादा उस आदमी को प्रसन्नता होती है कि कहीं गड्ढा खोद रहा है और उसमें लाल हीरा निकल आया तो रुपए में रुपए मिले उससे ज्यादा उसको प्रसन्नता होती है। उसकी स्थिति में प्रसन्नता में चार चांद लग जाते हैं। मछली का उदाहरण कोई ज्यादा बढ़िया नहीं लगता कि मछली को जल मिल गया, जल के वियोग में मछली की दशा होती है, उससे भी अधिक प्रेमी का वियोग होता है। किंतु मछली के जल के संयोग के समान सुख नहीं होता, थोड़ा विषय का सुख है। लेकिन भगवान का जो प्रेमी होता है उसको कोई विषय भोग के छांटे लगाकर खुश करना चाहे तो वो नहीं हो सकता। मछली तो फिर भी थोड़े बहुत पानी से बच सकती है। एक बात आप लोगों से कहता हूं, अपने भगवत प्रेम को छिपाकर रखो। प्रेम करने वाले के मन में अपने प्रेमी का ध्यान करने पर, नाम कर नाम लेने पर, उसकी लीलाओं पर कुछ गदगद भाव होता है, कंपकंपी होती है, प्रेम की अनुकूल थोड़ी क्रिया बन जाती है, तो वो खुश होता है कि आहा मेरा भक्ति भाव बढ़ रहा है। ये यहां एक गहरी बात है, उसका उपयोग इतना ही करना चाहिए, बहुत ध्यान से इसका उपयोग इतना ही करना चाहिए। हे दयालु, हे मेरे प्रियतम, वाह वाह, आपने मेरी प्रेम की वस्तु को स्वीकार कर लिया, उसका ये प्रमाण है। जैसे कोई जवाबी पोस्टकार्ड देता है और जब जवाब में वो पोस्टकार्ड वापिस भेजता है, जो हमने ही साथ में नक्की किया था उस पर लिख करके भेजता है, तो हमको खुश होता है, हमको खुशी होती है कि उसने हमारा पोस्टकार्ड स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार भगवान के मन में प्रेम होवे, भगवान के प्रति प्रेम होवे और प्रेम से कुछ हर्षपना आवे, भगवान ने स्वीकार कर लिया। यदि बिना मांगे ये काम में ले ले तो और भी प्रसन्नता होती है कि अब उसने मुझे अपना लिया, मैंने भगवान से मांगा नहीं था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ हो और भगवान ने स्वीकार कर लिया, और ऐसे ही स्वाभाविक ही शांति मिले, प्रसन्नता हो, और ही प्रसन्नता हो। उससे ज्यादा प्रसन्नता तब होती है जब भगवान के स्वरूप से मन हटता ही नहीं, और फिर उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है कि भगवान दर्शन देवे और हम उनके चरणों का स्पर्श करें। उससे भी ज्यादा प्रसन्नता होती है भगवान के वस्त्र आदि से स्पर्श हो जाए, वो हमारे सामने से निकल रहे हैं और अपना दुपट्टा कंधे पर रखते हुए हमारे मुंह पर लग गया, बस बस बहुत प्रसन्नता होती है। फिर वैराग्य और प्रेम छा जाता है, फिर उस वन को धन्यवाद देता है कि तू धन्य है, हे जंगल तेरी धूल बड़ी प्यारी है, क्योंकि तू मेरे प्रेमी के चरणों की स्पर्श की हुई है। कहना ही क्या है, लोक में भी हम देखते हैं, लोक में जिसमें हमारा प्रेम होता है उसकी कोई थोड़ी चीज मिल जाती है तो मन प्रसन्नता में भरता है। भगवान के अंदर यदि ऐसा मन हो जाए, और जैसे गोपियों को उद्धव जी पर प्रसन्नता इसलिए हुई कि भगवान ने एक पत्र लिखकर उद्धव को दिया था, और उद्धव ने उन गोपियों से कहा कि ये पत्र ले लो, तो गोपियों ने कहा कि ये पत्र किसका लिखा है। उद्धव ने कहा कि ये कृष्ण का लिखा हुआ है। गोपियों ने कहा हमारी अब समाधि लग रही है, हम न कुछ बोल सकते न सुन सकते न देख सकते, एक बार तुम ठहर जाओ, इस पत्र को अपने पास थंबे रखो, हम इस समय कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। उद्धव जी ने देखा गोपियां बेसुध होकर पड़ी है, सिसकियां लगाती हैं, कोई हंसती है, हंसती हंसती लोटपोट हो जाती हैं, कोई रोते रोते पूरे जंगल को अपने आवाज से भर देती हैं, कोई नाचती है और कोई चुपचाप ध्यान में बैठी है, किंतु किसी को किसी की कोई बात सुनाई नहीं देती है। उद्धव जी को इस प्रकार से गोपियों की दशा को देखकर बड़ा भारी उपदेश मिल गया और वे गोपियों को निहारते रहे। कई देर तक निहारने के बाद भी गोपियों ने अपनी समाधि नहीं छोड़ी। उद्धव जी वहां कई देर तक प्रतीक्षा करते रहे। उनके मन में आया कि कृष्ण ने मुझे पत्र दिया, इतने में इनकी ये स्थिति है, यदि ये पत्र को सुनेंगी तो क्या होगा। अब उद्धव जी स्वयं ने उस पत्र को लपेटकर वापस अपने पास रख लिया और उन कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों की इस अवस्था में उद्धव जी इतने खो गए कि वे अपने आप को ही भूल गए। मैं कौन हूं, किसके द्वारा भेजा हुआ हूं और क्यों आया हूं, मेरे पास क्या है, मैं किन से बात करता हूं, इस दुनिया को ही भूल गए। वो गोपियों के प्रेम में डूब गए, गोपियां भगवान के प्रेम में डूब गए। एक स्वभाव होता है, जब पुरुष जहां वास करता है उसके वहां बहाना करके जाएगा, कोई चीज लाएगा, उस चीज को निहारेगा, अतुलित आनंद मानेगा, तो ऐसे ही गोपियां बहाना करती हैं और कहते उद्धव इधर देखो, ये गोवर्धन पर्वत है, देखो, चलो आओ, हम आपको गोवर्धन पर्वत की महिमा सुनाएं, इधर आओ, यमुना की महिमा सुनाएं। अब उनको महिमा सुनाना नहीं है, कृष्ण की लीला उसमें एकाग्र होना है। नदी को छू लिया तो नदी का गुणगान गावेंगे, धन्य है आह तू सफल हो गई। भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे थे, मार्ग में कई पुरुष स्त्री मिले, उनको पूछा कि आपने राम लक्ष्मण सीता के दर्शन किए क्या। उन्होंने कहा हमने दर्शन किए हैं। तो भरत जी उनको देखकर इतने प्रसन्न होते हैं मानो वे ही सीता राम लक्ष्मण हो, इतना आनंद आता है। आहा तू सफल हो गई, तुमने राम जी के दर्शन किए मैया, सीता जी के दर्शन किए, लक्ष्मण जी के दर्शन किए। वो बेचारा जानता ही नहीं कि क्या बोलते हैं, क्या बात है, इतनी क्या बात है, इतना तो हमारे अंदर भी आनंद नहीं आया। और वो भरत जी कहते हैं तुम्हारी जन्म जन्म की साधनाएं सफल हो गई, बड़ भागी हो, वे पुरुष उस समय तुम्हारे जमाने में थे, तुमने देखे थे, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। दर्शन करने से फिर कितना आनंद होता है, ये सब लेखनी के बाहर की चीज होती है। कोई अश्रद्धालु है और उसको श्रद्धा वाला मिल जाए तो वह उससे सफल हो जाएगा। श्रद्धावान पुरुष प्रेमी के पुस्तक और पत्थर से भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ओ यहां वो महात्मा बैठे, ओह उसका जीवन सफल हो गया। वो कल वाली बात, मेरे दादाजी ईश्वर के भक्त थे, उनके हाथ की गीता हमने अच्छी प्रकार से रख रखी है, हम उस गीता को बहुत प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे दादाजी के द्वारा वो बांधी गई, रखी गई, पढ़ी गई, तो हमको भी उस पुस्तक को दर्शन करने से बहुत आनंद आता है। गीता जी तो हमको याद है, लेकिन हमारे दादाजी इसको पढ़ते थे। दादाजी के ऊपर हमने श्रद्धा की, हमने देखा नहीं, वे तो हमारे पैदा होने से पहले ही मर गए। वे पंचरत्न का पाठ करते थे, 108 माला फेरते थे, 3 बजे उठते थे, सेवा भाव अच्छा था, उनकी बातें सुन सुनकर के बड़ी प्रसन्नता होती। श्रद्धा बहुत भारी वस्तु है। किसी ने पूछा गंगा स्नान का क्या धर्म है, तो हम कहते हैं कि गंगा स्नान करो पर कुल्ला करना पाप है, कुल्ला करना निषिद्ध है, तो हमारे कहने से वो बंद कर देगा। परंतु जिसकी श्रद्धा नहीं है वही क्या है, कुल्ला कर दिया पानी तो बह जाएगा, वह व्यक्ति कभी गंगा का लाभ ले नहीं सकता है। मन में तो उसके एक नदी का जल है लेकिन गंगा का भाव नहीं। इसलिए महात्मा के प्रभाव से शिक्षा लेनी चाहिए। महात्मा के पास बैठे तो महात्मा के प्रतिकूल वस्तु का व्यवहार नहीं होगा। महात्मा के सामने बैठ जाओ, मन में बुरे भाव नहीं आएंगे। यदि महात्मा के पास बैठे और बुरे भाव आए तो समझ लो हमारी श्रद्धा की बहुत बड़ी भारी कमी है। हृदय के बुरे भावों का स्वतः ही नाश होता है, वह स्थिति श्रद्धावान की है। वह कहता है कि मैं तो महात्मा के पास बैठा हूं, माया की मजाल है, वो मेरे पास आ जाए। जब काकभूषण जी के पास गरुड़ गए तब उन्होंने कहा कि माया तो यहां आ ही नहीं सकती। कहा क्यों नहीं आती, तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारी रामचरित्र में इतनी श्रद्धा है, वो श्रद्धा अपने आप माया को धक्का देकर यहां से निकालती है। शिवलिंग है, मार्कंडेय पूजा करते हैं, यमराज आया तो झट शिवलिंग को पकड़ दिया, और यमराज को चुनौती देने लग गए, आओ ले जाओ मुझे। कैसे ले जाओगे? मैंने महादेव जी को अपने छाती से लगा रखा है हिम्मत तो ले जा। यमराज ने लाख प्रयत्न किया, कुछ नहीं हुआ। मार्कंडेय की श्रद्धा थी, शिव जी प्रकट हो गए। यमराज जी को धमकाया, यमराज जी ने कहा हे शिव, इसकी आयु पूरी हो गई तब मैं इसको ले जा रहा हूं, मैं बिना आयु पूरी होते किसी को ले जा ही नहीं सकता, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, इसकी आयु पूरी हो गई इसलिए ले जा रहा हूं। नहीं ले जा सकते, मेरा भक्त है, मैंने इसको शरण दी है, चले जाओ यहां से। के महाराज ये पत्र रहा, इसका लेखा जोखा, इसमें इतनी आयु दी है इसलिए आया हूं। शिव जी ने कहा लाओ पत्र, कहां है? पत्र देख करके शिव जी ने दृष्टि से देखा, उसकी आयु बढ़ा दी। ले गो, क्या लिखा है, तुमने क्या पढ़ा है? देखा महाराज इसमें तो अभी मौत लिखी नहीं है, तो चले जाओ। तो महाराज मैंने सही समय पर आने का, अब तुम चले जाओ। पत्र में उम्र बढ़ा दी, कारण क्या है? मार्कंडेय की श्रद्धा, और कोई कारण नहीं। ज्यादा दूर क्यों जाओ? महाभारत में एकलव्य भील है, द्रोणाचार्य ने उसको विद्या नहीं सिखाई, पर द्रोणाचार्य के दर्शन करके उनमें श्रद्धा कर ली। एक मिट्टी के द्रोणाचार्य जी बनाए और अपने अंतर आवाज को गुरु की आज्ञा मानी। नहीं, ऐसे शस्त्र नहीं चलाते, ऐसे चलाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे चलाते हैं। श्रद्धा हो गई, उसने इतना धनुर्विद्या का ज्ञान किया कि अर्जुन से अधिक सीख लिया। अब कब द्रोणाचार्य ने सिखाया? यहां श्रद्धा ने काम किया। हनुमान को, झाबरमल को, ये झाबरमल है वो ही अशोक के पिता, ईरोड के हनुमान, झाबरमल आदि की मेरे में श्रद्धा थी। सो उनके कहने से मालूम पड़ा उनका कोई काम सिद्ध हो गया। नहीं, ये झाबरमल कोई दूसरा ही है। तो उनका कोई काम सिद्ध हो गया और मुझे मालूम नहीं, मुझे न तो काम का मालूम न कोई और मालूम। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमने तो आपके नाम से काम कर लिया। हनुमान ने कहा तब पता चला। ये बात मैंने कही, कहने लायक नहीं थी, निकल गई बात। मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोई भी काम संसार का हो, अपना जिसमें श्रद्धा भाव हो उससे संसार के काम मत कराओ। प्रेमी के जीवन पर श्रद्धा करके मुक्त हो जाता है। गौरांग महाप्रभु, उनकी कोई खास जीवनी नहीं मिलती, पर उनमें श्रद्धा करके मुक्ति का लाभ आज भी उठा सकते हैं। जिनको परमात्मा प्राप्त हुए वे हमारे सामने बैठे हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करना कौन बड़ी बात है? ध्रुव और प्रह्लाद का तो नाम सुना है, उनका लक्ष्य बनाकर लाभ उठा सकते हो। वे कहीं भी हों किंतु हम उनसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कारण क्या है कि भगवान के भक्तों में भी जो श्रद्धा करता हो, चाहे वो सतयुग के हों, त्रेता के हों, द्वापर के हों, हमारे जन्म से बहुत सैकड़ों वर्ष पहले हुए हों, लेकिन हमने उन महात्मा में श्रद्धा कर ली, तो उस श्रद्धा का फल परमात्मा अपनी तरफ से देते हैं, उसको खाली हाथ नहीं जाने देते। एक महात्मा पुरुष से हम जितना लाभ उठा सकते हैं श्रद्धा से, वो लाभ उठा लेना चाहिए। नरसिंह मेहता के यहां सेठ बोला कि मुझे तो मालूम होता तो मैं सोने की हवेली कर लेता, मुझे क्या पता कि नरसिंह इतना बड़ा भात भरेगा, मैंने तो मजाक किया था, विनोद किया था, इसलिए इतनी लिस्ट बनाकर भेजी। अब तो मुझे बड़ी बेचैनी होती है कि सोने की हवेली क्यों नहीं बनाई, पछतावा कर लिया। क्यों? श्रद्धा नहीं थी। तमाशा किया नरसिंह जी से, श्रद्धा की बड़ी भारी बात। हम यहां इतने आदमी बैठे हैं और यहां पर श्रद्धालु को यह ज्ञान नहीं होता कि कितने बजे हैं, उसको तो देश काल की भी सुध नहीं रहती। वह तो चाहता है कि रात दिन रात दिन रात दिन ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही बातें होते रहे, ऐसे ही सुनते रहे, और कुछ नहीं, बस ऐसे ही हमारा श्रद्धा भाव बढ़ता रहे। श्रीमन्नारायण नारायण।